उपस्थित महानुभाव सत्संगी प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति इन दोनों तत्वों की चर्चा केवल मानव समाज में है। सृष्टि में असंख्य प्राणी हैं और बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो हम लोगों की तुलना में बहुत अधिक विशाल काय हैं, लेकिन सभी प्राणियों के सामने जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति का प्रश्न नहीं उठता। केवल मनुष्य के सामने यह प्रश्न उठता है, इसलिए कि उसमें विवेक का प्रकाश है। जिस विवेक के प्रकाश में वह देखता है कि जो कुछ है इंद्रियों के स्तर पर देखने सुनने में आया और जो कुछ बुद्धि के स्तर पर समझने में आया, वह सारा देखा हुआ सुना हुआ समझा हुआ जो है उससे परे उससे भिन्न एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, एक सत्य जीवन का होना चाहिए। इस प्रकार का आभास व्यक्ति को स्वतः ही रहता है और वही उसे प्रेरित करता है कि वह जीवन मुक्ति की चर्चा करे, जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करे और उस मुक्ति के आनंद से भरपूर होकर सदा सदा के लिए कृतकृत्य हो जाए। तो जीवन मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? केवल मुक्ति शब्द का प्रयोग मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि बचपन से सुना हुआ है, ऐसा मैं सुना करती थी घर में बातचीत करते हुए, दादी चाची माँ ये लोग बात करती तो ऐसा मैं सुना करती कि अरे भाई वो तो मर के मुक्त हो गया। स्वामी जी महाराज के पास बैठ करके मेरे ध्यान में ये बात आई कि शरीर के नाश हो जाने से व्यक्ति मुक्त हो जाता हो ये आवश्यक नहीं है। शरीर का नाश मुक्ति की पहचान नहीं है। मुक्ति का अर्थ तो यह होता है कि मुझे अपने लिए पराश्रय की आवश्यकता न रह जाए, मुक्ति का अर्थ यह होता है। मैंने संसार के संयोग से मिलने वाले सुखों को पसंद किया तो मेरा शरीरों के साथ तादात्म्य हो गया, आँखों के साथ तादात्म्य किए बिना देखे हुए दृश्य का सुख नहीं लिया जा सकता, कान के साथ अपने को मिलाए बिना श्रुति मधुर ध्वनि का आनंद नहीं लिया जा सकता, ये संभव नहीं है। इसलिए बाह्य जगत से आने वाली उत्तेजनाओं को ग्रहण करने के यंत्र जो अपने पास हैं, पांच ज्ञानेन्द्रियां सेंस मॉडलिटीज, इन्हीं के आधार पर दृश्य जगत का परिचय अपने लोगों को मिलता है। यदि उन उत्तेजनाओं के द्वारा मैंने इस दृश्य जगत के संयोग का सुख लेना पसंद किया तो शरीरों के साथ मेरा तादात्म्य हो जाता है, अन्यथा अविनाशी अस्तित्व में और भौतिक तत्वों से बने हुए शरीरों में कोई रचनात्मक संबंध है नहीं। अगर यह रचनात्मक संबंध होता कि हम दोनों में किसी प्रकार की सजातीयता होती तो फिर इसके बंधन से, इसके लगाव से, इसके चिंतन से मुक्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मौलिक रचना की दृष्टि से जो आपका मेरा मानव मात्र का यह अपना एक अस्तित्व भासित होता है कि मैं हूँ, यह अस्तित्व यह मैंपन किसी भौतिक तत्व से बना हुआ नहीं है। ऐसा होने पर भी मैंने भौतिक तत्वों को पसंद किया तो शरीर के साथ मुझको लगाव रखना पड़ेगा, और दृश्य जगत के संयोग का सुख पसंद किया तो मेरा शरीर से तादात्म्य रहेगा। परिणाम क्या होता है कि जब शरीर के साथ तादात्म्य रहता है, उसके प्रति आसक्ति रहती है, उसकी मुझे सख्त जरूरत मालूम होती है। क्यों? इसलिए कि इसके माध्यम से ही व्यक्त जगत के सुखों को हम ले पाते हैं, इसलिए इसकी बड़ी जरूरत मालूम होती है। और प्राकृतिक तथ्य क्या है कि आप जरूरत भी अनुभव करते रहिए और उसका सहारा लेकर दृश्य जगत का सुख लेना भी पसंद करते रहिए। ऐसा करते रहने पर भी इसका नाश हो जाता है, होता है कि नहीं जी? होता है। तो पसंद करते रहो तब भी इसका नाश हो जाएगा, इसकी जरूरत अनुभव करते रहो तब भी इसका नाश हो जाएगा। इस प्राकृतिक तथ्य से जन्म मरण का एक एक ऐसा कठोर और ठोस सत्य है मानव के सामने कि इस प्राकृतिक तथ्य से मनुष्य सचेत होकर सोचने लग जाता है कि जिसको मैंने पसंद किया, जिसको मैंने अपना माना, जिसके आश्रय से मैंने संसार में सुख लेना पसंद किया, वह मेरे नियंत्रण में रहा नहीं, मेरी इच्छा के अनुसार उसने काम किया नहीं। देखने का सुख लेना पसंद है, आंखों की रोशनी घट गई। सुनने का सुख लेना पसंद है, कान की शक्ति घट गई। बहुत अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन पसंद है और पचाने की ताकत खत्म हो गई। यह सब होता है। तो इन घटनाओं से विवेकशील मनुष्य जो है वह दृश्य जगत के पार संसार और शरीर के संयोग से उपजने वाले सुख के पार और क्या है इसके संबंध में सोचने लग जाता है, सजग होने लग जाता है और वहीं से मुक्ति की साधना आरंभ होती है। तो शरीर की शक्ति घट जाए, प्राण शक्ति का ह्रास हो जाए और अपने में उसकी आवश्यकता बनी रहे, तो इसका नाम है मृत्यु। शरीर की जरूरत मैं महसूस करूं और प्राण शक्ति खत्म हो जाए तो इसका नाम है मृत्यु। और शरीरों के रहते रहते, प्राण शक्ति के रहते रहते, शरीरों से परे अपने अविनाशी अस्तित्व का अनुभव कर लें और शरीर की आवश्यकता खत्म हो जाए तो इसका नाम है जीवन मुक्ति। ये शरीर के रहते रहते होता है, ये प्राणों के रहते ही इस प्रकार का पुरुषार्थ व्यक्ति करता है और शरीरों के रहते हुए भी वह जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। तो अब आप सोच करके देखिए, शरीर की आवश्यकता अनुभव करते रहो और उसको पकड़ करके रखना चाहो और प्राकृतिक विधान से उसका नाश हो जाए तो इस प्रकार की बेबसी, इस प्रकार की पराधीनता आप पसंद करेंगे जी? नहीं पसंद करेंगे, अच्छा नहीं लगता है। अब अपनी ही भूल से प्राप्त विवेक का अनुसरण हम ना करें, उसका सदुपयोग न करें और बार बार जन्म लेने की बेबसी में और बार बार बेबसी में मर जाने का दुख, अपमान और पराधीनता मुझे सहन करना पड़े, तो ये बात दूसरी है कि भाई अब सहते रहो। लेकिन मनुष्य के लिए यह आवश्यक नहीं है, वो चाहे तो जन्म मरण की बाध्यता को काट सकता है, वो चाहे तो प्राणों के रहते रहते शरीर की आवश्यकता से फ्री हो सकता है। इतनी स्वाधीनता बनाने वाले ने मनुष्य को दी है, तो जीवन मुक्ति का अर्थ ये है। अब उसकी साधना क्या होगी, उसका पुरुषार्थ क्या होगा, तो मैंने ऐसा पाया है संत की वाणी से जो कुछ समझ में आया और उनके साथ रहकर साधना की दृष्टि से जो कुछ अनुभव में आया, तो मैंने ऐसा पाया कि संसार के लगाव से यदि अपने लिए कुछ भी लेने की इच्छा का अंत कर दिया जाए तो शरीर की आवश्यकता खत्म हो जाती है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इसकी जरूरत नहीं समझूंगी तो इसका नाश हो जाएगा, सो नहीं होता है। सृष्टि में बहुत से उत्पत्ति और विनाश के क्रम चल रहे हैं जिनको कि हम लोग अपने लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, तो मेरे आवश्यक न मानने से उनका नाश हो जाता हो, सो नहीं होगा। सब प्राकृतिक विधान से अपने आप ठीक ठीक समय से चलते रहते हैं, बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, तो निर्माण और विनाश का अनवरत क्रम, इसी का नाम ही सृष्टि है। तो ये तो चलता ही रहेगा, डरने की कोई बात नहीं है। केवल समझने की बात इतनी सी है कि मुझ में सृष्टि देखने का राग है तो शरीर धारण करना पड़ा, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी चर्चा मैं एक बार कर रही थी तो स्वामी जी महाराज लेटे लेटे सुन रहे थे, तो बहुत ही उत्साह में आकर उठकर बैठकर कहने लगे कि क्या बात करती हो देवकी जी, तुम्हारी समझ में नहीं आती ये बात, ये कि अरे भाई प्रकृति को अपना काम बढ़ाना है कि तुमको जीवन मुक्ति के पथ में बाधा डाल दे। प्रकृति को कितना काम करना पड़ता है सोचो तो। व्यक्ति संसार में आवे, विवेक का प्रकाश रखे और फिर भी उसका सदुपयोग न करे, विषय वासनाओं से अपने को न हटाए, संसार की पराधीनता से अपने को न छुटाए, तो बार बार उसको जन्म देना, बार बार उसको धरती पर संभाल के रखना, बार बार उसकी अंत्येष्टि का इंतजाम करना, प्रकृति को काम करना पड़ता है कि नहीं? शक्तियां खर्च होती हैं ना भाई। तो मुझे इतना अच्छा लगा सुन करके, मैं सोचने लगी, माताओं को देख देख करके ध्यान में आया कि बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ लोगों को कितना ध्यान देना पड़ता है, अब ऐसा न हो जाए, अब ऐसा न हो जाए, उसकी रक्षा भी करो, उसका पालन भी करो, उसको पोषण भी करो, उसको खुश भी करो, उसको शिक्षित भी करो, बहुत प्रकार के कार्य माता पिता को करना पड़ता है। और बच्चे जब सयाने हो जाते हैं तो माँ बाप बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ऐसे ही प्रकृति माता की संतान हम सब लोग विवेक का प्रकाश लेकर, कार्य करने की क्षमता लेकर, हृदय में प्रेम रस का भाव लेकर दुनिया में आए, अगर क्रिया शक्ति, भाव शक्ति और विचार शक्ति का सदुपयोग करके बार बार जन्म लेने और बार बार मरने की बाध्यता को जीत जाएं, पार कर जाएं, इस तरह की बेबसी हमारी छूट जाए, अर्थात एक शब्द में कहूं कि हम सभी भाई बहन जीवन मुक्त हो जाएं, तो प्रकृति माता का काम पूरा हो जाएगा कि नहीं? जी हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने हमको सुझाया, मैं ऐसे ही, आदत थी मेरी कि मेरे भीतर जो कमी दिखाई दे तो मैं तो कमी को ही जानती थी, विशेषता को मैं जानती नहीं थी, तो कमी उनको सुनाती रहती थी, महाराज ऐसा है, मेरा काम कैसे चलेगा। और बार बार मुझे राजकुमार सिद्धार्थ का चित्र सामने दिखाई देता और कहती मैं कि महाराज वो वीर पुरुष कैसा था, उसने एक बार मृतक को देखा तो सब जीवित शरीरों में उसे मृत्यु का दर्शन हो गया और जन्म मरण के बंधन को काटने के लिए खड़ा हो गया। और सुना देती उनके वाक्य, मैं त्रिविध दुख विनिमृति हेतु बांधू अपना पुरुषार्थ सेतु, सर्वत्र उड़े कल्याण केतु, तब हो मेरा सिद्धार्थ नाम, हे क्षण भंगुर भव राम राम। तो मैं खूब सुनाती स्वामी जी महाराज को कि कैसे उन्होंने कर लिया, और मैंने तो न जाने कितनी बार प्रियजनों को श्मशान की ओर जाते देखा, फिर भी इस शरीर में से मेरा मोह नहीं घटता है। क्या बात है। तो अपने पर मेरा ध्यान नहीं जाता और मैं बार बार कहती कि बनाने वाले ने राजकुमार सिद्धार्थ को बढ़िया मटेरियल से बनाया था, हमको कुछ घटिया बना दिया, इसलिए हमारे से नहीं होता है। ऐसे करके और ये मैं गपशप करने के लिए नहीं, सचमुच मैं ऐसा ही फील करती थी कि मेरी बनावट में ही कहीं कुछ कमी है, और नहीं तो जिस संसार ने सचेत व्यक्तियों को एक एक घटना से सचेत कर दिया और वे जीवन मुक्त हो गए, उसी संसार में रह करके कितनी प्रतिकूल घटनाओं को मैं देख चुकी और मेरी चेतना काम क्यों नहीं करती, ऐसे ऐसे करके मैं शिकायत करती रहती। तो स्वामी जी महाराज ने मुझे सुझाव दिया और कहा कि ऐसी बात नहीं है, ना प्रकृति की ओर से कोई बाधा है, ना परमात्मा की ओर से कोई बाधा है, संसार भी चाहता है कि व्यक्ति बुराइयों से मुक्त रहे, माता पिता और समाज को भी प्रसन्नता होती है अगर कोई व्यक्ति वीतराग हो जाए, राग द्वेष से मुक्त हो जाए, सेवा भाव से भर जाए, ईश्वरीय प्रेम से भर जाए, तो समाज को भी प्रसन्नता होती है, माता पिता को भी प्रसन्नता होती है, संसार को भी प्रसन्नता होती है, प्रकृति को भी प्रसन्नता होती है, कोई दूसरा बाधक नहीं बनता है। बाधा अगर है तो बस अपनी ही ओर से है कि मैंने बेबसी में हाय करके रोते हुए जन्म लेना पसंद किया और बेबसी में हाय करके मरना पसंद किया, इसी भूल से जीवन मुक्ति का आनंद अभी तक आया नहीं और दूसरा कोई इसमें बाधक नहीं होता है। तो अब साधना कहाँ से आरंभ होगी, तो पहली बात मुझे ये सोचती है कि अपने संबंध में एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण जीवन के प्रति बनाना चाहिए कि मुझे बेबसी में जीना और बेबसी में मरना पसंद नहीं है। पराधीनता और पराश्रय को लेकर जीना भी पसंद नहीं है, पराधीनता और पराश्रय को लेकर मरना भी पसंद नहीं है। तो क्या हो सकता है, तो बड़े आनंद की बात यह हो सकती है कि शरीर और संसार के संबंध को निभाने के लिए सर्वहितकारी भाव से पूरी शक्ति लगाकर बहुत अच्छी तरह कार्य किया जाए, उसमें कोई बाधा नहीं होगी, वो साधन बनेगा। और अपने लिए स्वयं के लिए शरीर और संसार को पसंद न किया जाए। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण हुआ है, इनका विनाश हो जाएगा। अगर इनको पसंद करेंगे, इनका सहारा लेकर रहेंगे, तो किसी भी क्षण में बेसहारे होकर अधीर होकर मरना पड़ेगा। तो इसलिए इनका सहारा अपने लिए न लिया जाए, इससे कोई क्षति नहीं होगी। मनुष्य का मूल्य सारी सृष्टि से अधिक है, किस लिए? कि वह सृष्टि के पार, वह दृश्य जगत के मूल में जो अनंत तत्व है, जो आनंद स्वरूप है, जो रस स्वरूप है, उससे अभिन्न होकर उसी अस्तित्व को, उसी व्यक्तित्व को जिसको वो मैं कहता है, उसी को वह आनंद स्वरूप बना सकता है और प्रेम रस से भरपूर बना सकता है। तो आप अपने जीवन का सही मूल्यांकन करना आरंभ कर दें तो सत्संग की योजना सफल मानी जाएगी। अपना मूल्य संसार की दी हुई वस्तुओं के आधार पर करना, अपना मूल्य प्राकृतिक विधान से बनी हुई परिस्थितियों के आधार पर करना मानव जीवन का घोर अपमान है। कभी कभी भ्रम हो जाता है तो अपनी दुर्बलताओं को औचित्य देते हुए कोई कोई समझदार व्यक्ति ऐसा कहने लगते हैं कि अरे भाई, मनुष्य तो कमजोरियों से बना है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छा, मनुष्य और यह स्वीकार करे कि कमजोरियों से बना है, तो इसका अर्थ यह है कि उन कमजोरियों के नाश करने का तो फिर कोई उपचार ही नहीं हो सकता। कोई कोई कहता है कि बहुत अच्छी परिस्थिति हो जाए, बहुत सुंदर सामाजिक पुनर्गठन कर दिया जाए तो उसमें व्यक्तियों का बढ़िया विकास होगा। तो मनुष्य का विकास संसार के आधार पर कभी नहीं होगा, मनुष्य का विकास परिस्थितियों के आश्रित हो ही नहीं सकता। तो मैं कभी कभी पूछती कि बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों में पड़े हुए लोगों ने अपनी चेतना से, अपने ज्ञान से, अपने पुरुषार्थ से, अपने हृदय के भाव से देश के देश संसार की परिस्थितियों को बदल देना पसंद किया, वे कहां से आए? अगर परिस्थितियों से ही मेरा विकास होने वाला होता तो गुलामी की परिस्थिति में पैदा होने वाले लोगों में आजादी के लिए दीवानापन कहां से आता? ये बात गलत है कि मनुष्य परिस्थितियों के आश्रित है, ऐसा नहीं है, है नहीं। यह मनुष्य के भीतर स्वयं अपने आप में ही संसार से बहुत अधिक मूल्यवान तत्व विद्यमान है कि जिनका कभी नाश नहीं होता। तो उन पर अपनी दृष्टि जानी चाहिए कि मुझ में वह सत्य विद्यमान है कि जिसकी अभिव्यक्ति मात्र से हम मृत्युंजय हो जाएंगे, मृत्यु के भय का नाश हो जाएगा। ऐसे तत्व आपके भीतर विद्यमान है, यदि आप उसका विकास करना पसंद करते हैं तो फिर संसार और शरीर के आश्रित मत रहिए। इनको, इन पर दृष्टि पड़ेगी। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, सारा दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, तो जगत दिखाई देगा, शरीर और संसार के संबंध का निर्वाह किया जाएगा, लेकिन उसी को पूरा जीवन मान लेना ये भूल है। जहां तक शरीर और संसार के संबंध का निर्वाह है, एक शरीर दूसरे शरीरों को सहयोग देते रहते हैं, परस्पर सहयोग के आदान प्रदान में शरीरों का निर्वाह होता रहता है, यहां तक तो ठीक है, परंतु इसी को पूरा जीवन नहीं मान करके सहयोग के आदान प्रदान में शरीरों का निर्वाह होता रहता है, यहां तक तो ठीक है, परंतु इसी को पूरा जीवन नहीं मान करके इन दोनों से परे अपने ही में जो अपना अविनाशी अस्तित्व है उसके प्राकट्य की साधना करनी होगी। और वो साधना क्या है कि विवेक पूर्वक काम करें और भाव पूर्वक काम करें। विवेक पूर्वक करने का अर्थ क्या है कि किए हुए कार्य के बदले में जो कुछ बनेगा वह शरीरों के काम आएगा, सृष्टि के काम आएगा, कार्य का जो फल होता है वह किसी को अमरत्व प्रदान नहीं कर सकता। सोचना इस पर, जैसे परिश्रम पूर्वक खेत में अनाज उपजाया गया तो खूब परिश्रम किया आपने और बहुत अच्छी तरह वैज्ञानिक विधि से किया और अन्न उपज गया, तो उपजा हुआ अन्न जो है वह स्थूल शरीर के पोषण में काम आएगा, ठीक है, उसके आगे उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर भूखे शरीरों को खिलाने में उस अन्न को खर्च नहीं किया गया, बंद करके रख दिया गया, तो वो आपके साथ दुनिया के पार जाएगा क्या? जी नहीं जाएगा। और ज्यादा दिन तक संभाल करके रख सकिएगा क्या? नहीं रख सकिएगा। अगर समय पर उसका सदुपयोग नहीं हो गया तो प्रकृति के विधान से वो गोदाम में बंद किए किए ही सड़ करके मिट्टी के समान बन जाएगा। तो जिस मिट्टी में से वो निकला था उसी मिट्टी में वो मिल जाएगा अगर उसका सदुपयोग नहीं किया गया तो। स्थूल शरीर के पार अन्न नहीं पहुंचता, पहुंचता ही नहीं है, उसकी पहुंच ही नहीं है। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो शारीरिक और मानसिक बौद्धिक श्रम तथा योग्यता के द्वारा जो भी कुछ कार्य किया जाता है उसका फल लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए उपयोगी होता है, इतना ही उसका महत्व है। उसके आगे किए हुए कार्य का फल नहीं जाता। तो आप संतों की भाषा में सुनते होंगे कि भाई निष्काम कर्म करो। स्वामी जी महाराज सुनते सुनते कभी कभी कहते कि भैया कर्म न अपने आप में निष्काम होता है न सकाम होता है, कर्म को निष्काम निष्काम क्यों कहते हो, तुम स्वयं निष्काम बनो। कर्ता निष्काम बने तो कर्ता का कल्याण हो जाए। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह है कि आप कार्य अवश्य करें और उससे सही परिणाम अवश्य निकलेगा और कार्य का जो फल बनेगा वो समाज के लिए, शरीरों के भरण पोषण के लिए काम आएगा। इतना ही उसका महत्व आपके जीवन में होना चाहिए, इसके आगे नहीं। लेकिन आप तो इसके आगे भी हैं, उसके बाद क्या होना चाहिए? तो किए हुए कार्य के फलाफल का चिंतन छोड़कर, अशुभ कर्म के लिए तो मनुष्य के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। शुभ कर्म, हितकारी कर्म ज्ञान पूर्वक किया गया, ज्ञान पूर्वक किया गया इसका अर्थ केवल इतना ही है कि किए हुए कार्य का फल मुझे मृत्युंजय नहीं बनाएगा, मुझे परम प्रेमास्पद परमात्मा से नहीं मिलाएगा। जो फल बनेगा वह संसार में रहेगा और शरीरों के काम आएगा। ज्ञान पूर्वक कार्य करने का ये अर्थ है। ये ऐसा आपने काम कर लिया और भाव पूर्वक पवित्र भाव से काम करने का अर्थ यह है कि कोई भी कार्य जब आप आरंभ करते हैं दैनिक जीवन में तो एक बार उसके संबंध में सोच लीजिए कि मेरे इस कार्य के द्वारा संसार के किसी भी प्राणी की क्षति न हो, नुकसान न पहुंचे। फायदा तो पहुंचेगा ही, बुराई नहीं रहेगी जीवन में तो भलाई तो होगी ही, सीमित दायरे में होगी। थोड़े से लोगों के साथ हम कुछ भला व्यवहार कर पाएंगे लेकिन बुराई किसी के साथ नहीं करेंगे। तो पवित्र भाव से कार्य करने का अर्थ होता है कि मेरे कार्य के फल से किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। तो भाव की पवित्रता और विवेक के प्रकाश में जी खोलकर, पूरी शक्ति पूरी योग्यता लगाकर काम कर डालिए। लेकिन उसके फल को अपने जीवन का आधार मत बनाइए। तब क्या होगा कि काम पूरा होने के बाद आपको अपनी शांति में रहने की सामर्थ्य मिलेगी। आप स्वयं जब अपनी शांति में होंगे तो ना शरीर से कुछ लेना है ना संसार से कुछ लेना है। शरीर और संसार का जो काम था वो पूरा हो गया। तो बहुत ही सहज भाव से ऐसे साधक इंद्रियों को विषय विमुख कर लेते हैं। तो इंद्रियां विषय विमुख हो जाती हैं, मन निर्विकल्प हो जाता है, बुद्धि सम हो जाती है, अर्थात उसमें हलचल बंद हो जाती है। इस स्थान पर आकर के बहुत ही शांति मिलती है अपने को, बहुत शांति मिलती है। जैसे जैसे हमारी जीवनी शक्ति का व्यय बंद होता चला जाता है, बहिर्मुखी वृत्ति अंतर्मुख होती चली जाती है, अपने को बहुत आराम मिलता है। मैं क्या बताऊं, थकान का अनुभव तो हम सब लोगों ने किया है लेकिन सामान्य दृष्टिकोण ऐसा ही है कि बड़ा परिश्रम पड़ता है, परिस्थिति ऐसी है कि मुझे बहुत काम करना पड़ा इसलिए हम थक गए, लेकिन मुझे तो सत्संग के प्रकाश में ऐसा दिखाई देने लगा, अपने पर बहुत दया आने लगी कि परिश्रम से आदमी उतना नहीं थकता है, लेकिन लोभ के वशीभूत होकर काम करने वाला, क्रोध के वशीभूत होकर गलत सलत प्रतिक्रिया करने वाला, कामनाओं से प्रेरित रहने वाला बहुत थकता है, बड़ी थकान लगती है, जिंदगी का भार ढोने जैसा लगता है, इन विकारों का बोझ ढोना, बड़ी दयनीय दशा मुझे दिखाई देती है कि आदमी किस प्रकार से क्रोध को भी संभाल रहा है, लोभ को भी संभाल रहा है, अभिमान को भी संभाल रहा है, और जाती हुई प्राण शक्ति को भी संभाल रहा है, बिगड़ती हुई परिस्थितियों से भी जूझ रहा है। क्या करे बेचारा, थके नहीं तो कहाँ विश्राम मिले उसे। जल्दी जल्दी सिर के बाल सफेद हो जाते हैं, जल्दी जल्दी थकान आ जाती है, जल्दी जल्दी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, सब दृश्य दिखाई देते हैं। मैं देखती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ क्या हालत है, सोचो। तो थकान उचित तरीके से कर्तव्य पालन में नहीं आती है, थकान तो इन विकारों से हो जाती है। आपको विश्राम चाहिए तो वो विश्राम किसी बाहरी सहायता से मिले ऐसी बात नहीं है। आप अपने विकारों से अपने को मुक्त कीजिए, देखिए कैसा विश्राम मिलता है। आवश्यक कार्य करने के बाद सब अनावश्यक कार्यों को छोड़ दीजिए। हम लोग तो अनावश्यक चिंतन में भी फंसे रहते हैं, काम करना है 5 दिन के बाद, और आज से ही उस चिंतन में प्राण शक्ति का ह्रास होता जा रहा है। ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, तो ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, 5 दिन के बाद उस काम को करने की परिस्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी मालूम नहीं है, उसकी जरूरत भी रहेगी कि नहीं रहेगी सो भी पता नहीं है, लेकिन जो समय मिला था शांत होकर के, शरीरों और संसार से असंग होकर अपने में अविनाशी अस्तित्व के अनुभव करने का, वो समय भी व्यर्थ के चिंतन में खो दिया। इसी में थकान आती है, बैठे बैठे सोच सोच के भी थक जाता है आदमी, कंट्रोल तो अपना है ही नहीं है, कोई बात अपने हाथ में है नहीं, और फिर भी सोच सोच के थक जाता है। साधना की दृष्टि से क्या होना चाहिए, महाराज जी ने 2-4 वाक्य ऐसे बताए हैं बिल्कुल सूत्र की तरह। कहते हैं, विवेक पूर्वक पवित्र भाव से आवश्यक कार्य को पूरा कर दो और अनावश्यक को छोड़ दो। छोड़ सकते हैं आप, अगर करने किए हुए काम के बदले में कुछ मिलेगा तो उसी से मेरा निर्वाह होगा, इस भ्रम के कारण में हम लोग अनावश्यक कार्य को छोड़ नहीं पाते हैं। अगर ये भ्रम निकल गया आपके जीवन से, किए हुए कार्य का जो फल बनेगा वो शरीरों के काम आएगा, और अपनी शांति में जो सत्य अभिव्यक्त होगा वह मेरे काम आएगा, तो कितना स्पष्ट हो जाए। तो शरीरों का निर्वाह है जितना आवश्यक है, अपने में अविनाशी अस्तित्व की अभिव्यक्ति उससे अधिक आवश्यक है कि नहीं, बोलिए जी, है, मानते हैं, सोच के देखो। दिन रात धुन लगी है, हाय हाय हाय, ऐसी व्यस्तता, फुर्सत ही नहीं है किसी बात के लिए, पते ही नहीं चलता है अपने आप में कितना आनंद भरा है, जीवन अपने आप में ही कितना आनंद और रस से भरा पूरा है, इस पर न कभी ध्यान जाता, न इसकी कभी याद आती है, न इसके आश्रित हो करके हम थोड़ी देर के लिए शांत रह पाते हैं, और जो कभी नहीं मिला कभी नहीं मिलेगा उसके पीछे दौड़ दौड़ करके अनमोल जीवन खपा देते हैं, बेमोल बिक जाता है, ऐसा बुरा हाल होता है। तो जीवन मुक्ति का जिनको साधन पसंद है वे ऐसा ही करते हैं, आवश्यक कार्य पूरा कर लिया, अनावश्यक कार्य को रख दिया। कैसे रख दें? ज्ञानी जन तो यूं ही छोड़ देते हैं, और मुझे जब जरूरत पड़ी, बहुत प्रकार के कार्य मैं एक साथ करती थी, तो मैं क्या करती थी कि डायरी और पेंसिल साथ में ले करके बैठती थी शांत होने के लिए, और जरूरी काम खास समय के भीतर जितना होता है उतना होता है, जितना हम चाहते हैं सब थोड़े कर पाते हैं, बहुत सा रह जाता है। तो बाकी जो कुछ रह गया, जो कि मस्तिष्क में भरा ही हुआ है, किसी तरह से मेरा पिंड छोड़ेगा ही नहीं, तो नंबर लगा के 1, 2, 3, 4, 5 करके मैं डायरी में लिख देती, इनको ये कहना है, ऐसे ये सामान मंगवाना है, इसको देना है, इसको लेना है, ये पत्र लिखना है, ये खबर करनी है, जो भी कुछ होता लिख करके, और ये सब होगा 2-4 घंटे बाद, तुरंत की बात है नहीं, लिख करके मैं उसको रख देती कि अच्छा बस ठीक है, अभी तुरंत ये सब कुछ भी होने वाला नहीं है और भूलूंगी नहीं, ये भी निश्चिंतता हो जाती उसमें लिख देने से, रख करके और फिर शांत हो जाते। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आवश्यकता तो रहती नहीं है। अनुभव करके मैंने देखा है कि अगर शांति संपादन को जीवन का अनिवार्य अंग बना लीजिए तो व्यवहारिक जगत का भी काम करने में विस्मृति का दोष आपका मिट जाएगा। हलचल हलचल में पड़े रहना, लोभ में पड़े रहना, भय में पड़े रहना, इसी में तो हम लोग भूल जाते हैं। कागज कहीं रख दिया, ढूंढ रहे हैं कहीं, ताला डाल दिया, चाबी कहीं छोड़ दिया, समय पर मिले ही नहीं, दवा लेने जा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन का पता नहीं, ये सब होता रहता है। क्यों होता रहता है? कि अनेक प्रकार के विकार और संवेग और भय और लोभ में पड़ा हुआ व्यक्ति, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, स्मृति कमजोर होती चली जाती है, और शिकायत भी करते रहते हैं, उपाय भी खोजते रहते हैं, डॉक्टरों से सलाह भी लेते रहते हैं, आजकल मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई। क्यों कमजोर हो गई भाई? ऑपरेटर्स तो तुम्हारे पास है, मशीन तो है, काम तो कर रही है, फेल क्यों हो रही है? इसी अस्वाभाविक जिंदगी से फेल होने लगती है। अगर आपने शांत रहने को जीवन का अनिवार्य अंग बनाया तो विस्मृति का दोष भी मिट जाएगा, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, सब प्रकार की शक्तियों की वृद्धि होती है उसमें, और सूक्ष्म शक्तियां भी बढ़ेंगी जिनके आधार पर असत्य के संग का त्याग और सत्य की स्वीकृति। आज अपने को बड़ी कठिन लग रही है, इसमें जो असमर्थता अनुभव हो रही है, ये असमर्थता भी मिट जाएगी, ये कठिनाई भी चली जाएगी, शक्ति की वृद्धि होती जाएगी, भीतर भीतर से ही बल आता जाएगा, और आप अपनी दुर्बलताओं पर विजयी होते हुए लौकिक व्यवहार में भी व्यवहार कुशल होंगे, और लोक की आसक्ति को छोड़कर, बंधन को तोड़कर जीवन मुक्ति के भी अधिकारी होंगे। बहुत सी बातें हैं, और बहुत ज्यादा कहने से भी बहुत कोई लाभ नहीं होने का है, लेकिन जो आरंभ करेगा उसको इस दिशा में नया नया प्रकाश अपने आप सामने आता जाएगा, अगला स्टेप दिखाई देता रहेगा, आप अनुसरण करते जाइए। और बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि शांति जितनी गाढ़ी होती जाएगी, संकल्प विकल्प का तांता खत्म हो जाएगा, तो उस शांति में ही अपने आप से ही बिना किसी प्रयास के शरीरों से तादात्म्य टूट जाएगा, और ये दृश्य जगत जैसे दिखाई देता है वैसे ये भी एक आकृति दिखाई देगी, और इससे भिन्न आपका स्वतंत्र आनंदमय अस्तित्व है इसका बोध हो जाएगा। इसका नाम है जीवन मुक्ति। अब भक्ति की अभिव्यक्ति बहुत ही सरस लगती है, और मानव हृदय की रचना उस अविनाशी अलौकिक तत्व से हुई है, इसलिए उस प्रेम रस की चर्चा हर कोटि के व्यक्ति को पसंद आती है। जीवन का रस ही है वो। प्रेम तत्व के आधार पर ही व्यक्तित्व सुगठित होकर रहता है, उसी से सिंचित और उसी से पोषित होता रहता है और हर व्यक्ति को यह तत्व पसंद आता है। यह जीवन रस है, अलौकिक है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। सुख भोग की तृष्णा में पड़े हुए व्यक्ति का रस स्रोत सूख जाता है, भीतर से वह नीरस नीरस होकर के संसार में कहाँ कहाँ भटकता फिरता है, धूल फांकता फिरता है, कहाँ रस मिलेगा, कहाँ अच्छा लगेगा, कैसे सुख मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है, बाहर है नहीं इसलिए मिलेगा नहीं। तो सत्संग के संपर्क में, संतों के संपर्क में, भगवत भक्त के संपर्क में जो लोग रहते हैं उनको इस बात का पता चल जाता है कि मेरा हृदय जो है वह उसी पवित्र मधुर रस की आवश्यकता अनुभव कर रहा है और जब तक वह रस मिलेगा नहीं यह तृप्त नहीं होगा। सुख की तृष्णाओं से हृदय कठोर बनता है, शुष्क बनता है, निर्बलता बढ़ती है, स्नायु के कार्य में विक्षेप होता है, तरह तरह की मानसिक विकृति होती है और जैसे जैसे हृदय को पवित्र प्रेम रस की सरसता मिलती है तो तन का रोग और मन का रोग ये सब मिटने लग जाते हैं, शरीर और संसार का मूल्य घट जाता है, परम प्रेमास्पद प्रभु से मिलन की उत्कंठा तीव्र हो जाती है, तो जीवन मुक्ति तो पहले ही आ जाती है और भगवत भक्ति का रस मनुष्य को सदा सदा के लिए कृतकृत करता है। भक्ति की अभिव्यक्ति ये भी मनुष्य के भीतर ही है और उसी में से होगी। अब वर्तमान दशा अपनी क्या है थोड़ी देर के लिए देख लें इसको। तो प्रेम की, प्रेम रस की आवश्यकता तो हम सब लोग महसूस करते हैं, मीठे वचन अच्छे लगते हैं, अपनापन अच्छा लगता है, दूसरों से प्रेम का व्यवहार हम लोग पाना चाहते हैं। नुकसान क्या हो गया? तो नुकसान यह हो गया कि जहां प्रेम तत्व को हम लोगों ने किसी प्रकार की कामना वासना संकल्प के साथ जोड़ दिया तो वह प्रेम तत्व जो है शुद्ध रूप में न रह करके आसक्ति के विकार का रूप धारण कर लेता है। व्यक्तियों के साथ जोड़ दो, वस्तुओं के साथ जोड़ दो, तो जो स्वयं अपने आप में पूर्ण नहीं है वह प्रेम का पात्र नहीं हो सकता, वह प्रेम देने वाला भी नहीं हो सकता। तो महाराज जी कभी कभी कहते कि भैया इस सारी सृष्टि में तुम्हारी रचना इतनी सुंदर है कि प्रेम का दान केवल तुम ही कर सकते हो और उस प्रेम का पान केवल परमात्मा कर सकता है, ना और कोई प्रेम का दान देने वाला है संसार में, ना और कोई प्रेम का पान करने की क्षमता रखने वाला है। मनुष्य ही एक अकेला इस सारी सृष्टि का श्रृंगार ऐसा है कि जो प्रेम का दान कर सकता है और परमात्मा ही अकेला एक ऐसा अधिकारी, समर्थ अधिकारी है जो मानव हृदय के प्रेम रस का पान कर सकता है। और किसी में न देने की क्षमता है, न और किसी में लेने की क्षमता है नहीं। और बाह्य दृष्टि से आप देखिए तो पशु पक्षी वनस्पति सबको प्रेम रस प्रभावित करता है, करता है कि नहीं? देख, करता है। तो अनोखा तत्व है इस नाशवान जगत में। हम भाई बहनों के व्यक्तित्व से अभिव्यक्त होने वाला यह अविनाशी तत्व है। कोई कितना भी अज्ञानता में जीता हो और भूतकाल में कितनी प्रकार की भूलों को कर चुका हो, फिर भी वर्तमान में उसको प्रेम से आप व्यवहार करिए
तो वो स्वीकार करने को राजी रहेगा कि नहीं? जी रहेगा। कितनी भी कठोरता उसके जीवन में आ गई हो, आपके द्वारा प्रेम की सरसता तो उसको अमृत के समान लगती है, बहुत पसंद करता है आदमी। तो मैं तो इसको जीवन रस कहती हूँ, इतनी बढ़िया चीज है। अभिव्यक्ति कैसे होती है, तो लेने वाले तो सब दिन से सब प्रकार से लायक ही हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। विचार तो ये करना है कि हम देने वाले देने के लायक हैं कि नहीं, ऐसा सोचना है। तो प्रेम रस का दाता कौन बन सकता है? महर्षि वाल्मीकि की वाणी दोहरा लीजिए, जिन्ही न चाहिए कबहु कछु, ये पहला शब्द है। जिन्ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। तो बार बार मैं सोचती हूँ कि अदृश्य परमात्मा से प्रेम करने से जीवन का ताप मिटेगा, यह बात हम सब लोग जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं। कभी भी किसी ने संत की भक्त की वाणी को सुना होगा, कभी किसी ने सद ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, तो हर भाई बहन को इस बात का पता है, सबको इस बात का पता है। कभी भी किसी ने संत की भक्त की वाणी को सुना होगा, कभी किसी ने सद ग्रंथों का अध्ययन किया होगा, तो हर भाई बहन को इस बात का पता है, सबको इस बात का पता है। लेकिन प्रश्न क्या रहता है, अनेकों के मुख से मैंने सुना, स्वामी जी महाराज से प्रश्न करते हैं, और भी संतों से करते ही रहते हैं, महाराज संसार तो परमात्मा तो दिखाई नहीं देता है, तो उसको कैसे प्यार करें, दिखाई दे तो करें। तो हमने खूब सोचा इस पर कि हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि दिखाई दे तो करें। अरे भाई, दिखाई देने वाला तो प्यार करने के लायक निकला नहीं, अब उसको भी काहे के लिए दिखाई देने वाले में शामिल करते हो? जो कुछ दिखाई दे रहा है सब तुम्हारी आंखों से ओझल होता चला जा रहा है, भागता जा रहा है, तो वो तो काम के लायक निकला नहीं। अब एक रह गया है जिसके बारे में भक्तजन कहते हैं कि वो सदा सदा से तुम्हारा प्यारा है, और कभी भी उसकी ओर से प्यार की रस धारा का आना बंद नहीं हुआ। तो एक रह गया है ऐसा, तो उसको भी इसमें क्यों शामिल करना, उसको तो रहने दो, अपने काम आएगा। एक बात हो गई। दूसरी बात मेरे ध्यान में आई, बहुत सोचा मैंने, तो मेरे ध्यान में यह बात आई कि परमात्मा से भी प्यार करने का प्रश्न जब मनुष्य के जीवन में आता है, तो वो सोचता है कि दिखाई देता तो अच्छा था। ऐसा क्यों सोचते हैं हम? तो बहुत गहराई में छिपी हुई बात अपने भीतर, मैं अपने संबंध में कह सकती हूँ, सभी महानुभाव अपने पर लागू नहीं करेंगे, मैं और किसी को नहीं कहती हूँ, मेरे लिए तो उनके अतिरिक्त और कोई है नहीं, और मेरी ही वासना की निवृत्ति के लिए बोलने का राग था, तो मेरे इस राग को मिटा करके मुझको जीवन मुक्ति भगवत भक्ति दिलाने के लिए उन्हीं परम प्रेमास्पद ने, उन्हीं अव्यक्त तत्व ने श्रोताओं का प्रकट वेश बनाया है। मेरे सभी प्रणम्य हैं, सभी पूजनीय हैं, मैं किसी में दोष देखने का काम कभी नहीं करूंगी। अपने को सामने रखकर मैं कहती हूँ कि क्यों चाहते हैं हम कि दिखाई दे तो उसको पसंद करें? तो इसका अर्थ यह है कि अपने भीतर जो पुरानी आदत है कि जब जब संसार पर दृष्टि पड़े तो देखो तो कहाँ से कुछ मिल सकता है, तो उससे नाता जोड़ो, किससे कुछ सहायता मिल सकती है तो उससे संबंध बढ़ाओ। तो ये कुछ लेने की बात जो मनुष्य के भीतर रहती है, इसलिए परमात्मा के संबंध में भी आदमी सोचता है कि वो दिखाई दे तो देखें जरा कैसा है, मेरे काम आने के लायक हो तो उससे कुछ बातचीत की जाए। और जब जब ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति की बात सामने आई, तब तब मैंने सुना, बारंबार सुना। संत कबीर ने कहा, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे भूई धरे, सो बैठे घर माए। तो ईश्वरीय प्रेम से जीवन लहराता क्यों नहीं? वह उतना आवश्यक मुझे क्यों नहीं लगता? इन सब प्रश्नों को अपने सामने रख रख करके, खूब छानबीन करके मैंने भीतर देखा, तो मुझे पता चला कि बढ़िया बात तो यह है कि भीतर में जितने भी विकार भरे हों, जिनके कारण से प्रेम रस की अभिव्यक्ति में बाधा पड़ रही हो, उन सब विकारों के सहित उस अनंत परमात्मा के आगे अपने को समर्पित कर दो। बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा कि आपका दिया हुआ सब बढ़िया था, शुद्ध था, पवित्र था, कोमल था, सरस था, सब बढ़िया था। मैंने अपनी भूल से सबको बिगाड़ रखा, फिर भी आपकी बड़ी कृपालुता है। मेरी दुर्दशा को देखकर, मेरी पीड़ा को देखकर, उस करुणा सागर की ही करुणा में लहरियां उठने लग जाती हैं, उन्हीं की करुणा द्रवित हो करके मुझे छूने लगती है, तो इस विविध रूप प्रवृत्तियों में फंसे हुए संसार में भी व्यक्ति परमात्मा की याद करता है। तो मैं महाराज जी से कहने लगी कि महाराज जी, बड़े अच्छे हैं आपके मित्र, बहुत प्रिय लगने लगे मुझे, इसलिए कि मैं तो उनको भूल गई थी और मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया था, मुझ में सामर्थ्य कहाँ जो मैं उनको याद करूं। लेकिन इस सुख दुख के द्वंद में फंसे हुए पीड़ित जीवन को देखकर उन करुणा सागर की करुणा में रस लहराने लगा, उन करुणा सागर की करुणा द्रवित होकर मुझे छूने लगी, तो उन्होंने याद किया मुझे, दुख से मुझे निकालकर अपने प्रेम का पात्र बनाकर मुझे सरस बनाने की बात उधर से पैदा हुई, तो पीछे मुझे उनकी याद आई। बड़ा अच्छा लगने लगा, बहुत बल मिलने लगा। हमने कहा बढ़िया बात है। तो ऐसा आप देखिए कि भूतकाल में हम लोगों ने कुछ भी किया हो, परवाह मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। महाराज जी ने एक जगह पर कहा कि अगर तुम भूतकाल में पाप करके पहाड़ बना के खड़ा कर दिया है तुमने, तो तुम्हारे पाप के पहाड़ को खत्म करने के लिए प्रभु की करुणा का एक बूंद पर्याप्त है, डरो मत, निश्चिंत हो जाओ। भूतकाल में हमने कुछ भी किया हो, वर्तमान में जब ध्यान में आया कि इस संपूर्ण व्यक्तित्व के भीतर मेरे पास एक अनमोल तत्व भी है, प्रेम तत्व, और वो अनेक प्रकार के विकारों से दूषित हो चुका है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं। परमात्मा अनंत सागर हैं प्रेम के, उनके यहाँ कभी नहीं घटेगा, उधर से उदारता का दरवाजा कभी संकीर्ण नहीं होगा, निश्चिंत रहो बिल्कुल। और अपने को सबके सहित, जो अच्छा किया, जो बुरा किया, जो सफल हुआ, जो कुफल हुआ, सब सहित उनके समर्पित करके उनकी शरणागति लेकर शांत हो जाओ। तो थोड़ी थोड़ी देर की शांति में अनंत की कृपा शक्ति इतना काम कर देती है कि जितना बहुत दिनों के तप से नहीं हो सकता। भक्ति की अभिव्यक्ति होती है। वे तो वीर पुरुष थे जिन्होंने लोक का सुख और परलोक का मोक्ष सब उस अनंत परमात्मा पर न्योछावर करके उनको प्यार करना पसंद किया। वे तो बड़े वीर पुरुष थे, हम तो अपने को निर्बल देखते हैं, तो निर्बलों के भी वे हैं अपने। और कभी कभी तो अपनी असमर्थता से पीड़ित निर्बल साधक परमात्मा को बहुत प्रिय लगने लगता है, जैसे अबोध और निरीह बालक दुख में पड़ के अधीर होकर माँ बाप को पुकारे तो माता पिता उसकी योग्यता नहीं देखते, उसका दोष नहीं देखते, उसकी पुकार पर दौड़कर उसे उठा ही लेते हैं। ऐसे ही वर्तमान क्षण में अपना चित्र कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों न दिखाई देता हो, अपने को न डरना है, न संकोच करना है, न निराश होना है, उस सर्व समर्थ के आगे अपने को समर्पित कर दो, शांत हो जाओ, उनकी कृपा शक्ति सब प्रकार से संभाल लेगी और अपने प्रेम का पात्र बनाकर प्रेम के आदान प्रदान में।
उपस्थित महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, सृष्टि में सब कुछ उत्पत्ति विनाश युक्त है, बनता है बदलता है, मिटता है बिगड़ता है। अर्थात दृश्य मात्र क्षणभंगुर है, परंतु सर्व उत्पत्ति के आधार एवं सर्व प्रतीति के प्रकाशक परमात्मा अविनाशी हैं। वे ही अव्यक्त अविनाशी भगवान कभी कभी अपने व्यक्त विग्रह को लेकर संसार में आते हैं तथा अपनी प्रीति भरी दिव्य लीलाओं से अपने भक्तों का रंजन करते हैं। उनकी दिव्य लीलाओं का कभी नाश नहीं होता। जब से मुझे इस बात का पता चला तब से मैं बहुत आनंदित रहती हूँ। अपने को समझाती हूँ कि अगर तू सुंदर दृश्य ही देखना चाहती हो तो भुवन मोहन की श्याम सलोनी मधुर मूर्ति को देखो, उसको देखकर नेत्र सदा के लिए तृप्त हो जाएंगे। सोचकर ही बड़ा आनंद आता है। रामावतार और कृष्णावतार की ललित कथाएं सुन सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था बचपन से ही। कभी कभी मैं गुरुजनों से पूछा करती थी कि जब भगवान आए थे इस पृथ्वी पर और इतनी प्रेम भरी लीलाएं उन्होंने की, तब मैं कहां थी। ऐसा मैं पूछती थी माता जी से, पिताजी से, दादी से, और मन ही मन बड़ा दुख लगता था कि न जाने मैं कहां थी। अगर उस समय मुझे पता चला होता कि भगवान इस धरती पर आए हैं तो मैं उनसे चिपक जाती, उनको छोड़ती ही नहीं। अब क्या हो, बाजी हार जाने की तरह एक पीड़ा भीतर भीतर रहती थी। एक बार सत्संग के क्रम में स्वामी जी महाराज के साथ में बैठी थी, एक संत के मुख से मैंने सुना कि बारंबार प्रभु की लीलाएं दोहराई जाती हैं, प्रत्येक कल्प में प्रत्येक युग में बारंबार रामावतार होता है, बारंबार कृष्णावतार होता है। जितनी बार त्रेता युग आएगा उतनी बार रामावतार होगा, और जितनी बार द्वापर युग आएगा उतनी बार कृष्णावतार होगा। सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आशा जग गई कि चांस है, अभी फिर लीला होने वाली है, तो बड़ी बढ़िया बात है। संसार के संबंध में नश्वरता के विचार से एक उदासी का भाव जगता था, वह उदासी दूर हो गई। सृष्टि का कण कण प्यारे प्रभु की प्रियता एवं दिव्यता से अनुप्राणित मुझे अति प्रिय लगने लगा। दृश्यों की परिवर्तनशीलता में चिरंतन नवीनता बनाए रखने की कलाकृति को देखकर अनुपम अलौकिक कलाकार पर मैं बलिहारी जाती हूँ। इस दृश्य जगत को भी वे कितना प्यार करते हैं, वे अपने अलौकिक रूप से इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, अपने अनंत माधुर्य से इसकी मधुरिमा बढ़ाते हैं, अपने अनंत ऐश्वर्य से इसका नियमन करते हैं। आहा, यह जगत भी धन्य है जो प्रेम स्वरूप की विहार स्थली है। इस लोक के बासी होकर रहने में भी बड़ा आनंद है। जहाँ वे अरूप रूप बनाकर आते हैं, हमारे नयनों के विषय बनकर सर्वेंद्रियों सहित हमको अपने मधुर प्रेम के अथाह सागर में विलीन कर लेते हैं। धन्य है प्यारे प्रभु, धन्य है मानव, और धन्य है यह वसुंधरा। ये सब रहस्य की बातें सत्संग के प्रकाश में संत की वाणी में मुझे प्राप्त हुई। इस समग्र सृष्टि में अगर किसी दृश्य को हम लोग दिव्य कह सकते हैं, नित्य कह सकते हैं, तो वह अवतारी पुरुष की लीलाएं हैं। यह बात मुझे ठीक लगी, जंच गई इस आधार पर कि उनकी लीलाएं दिव्य हैं। उनकी दिव्यता का प्रमाण यह है कि प्रत्येक कल्प की पुनरावृत्ति में, प्रत्येक युग में वे अपने ढंग से आते ही रहते हैं, अपने बच्चों को प्रेम प्रदान करते ही रहते हैं। बारंबार यह बात होती रहती है। चिर पुरातन चिर नवीन का विशेषण सिद्ध होता रहता है। उनकी दिव्य लीलाओं में और सृष्टि के अन्य दृश्यों में बड़ा भारी अंतर है। सुख दुख के भोगी संसार में आए गए, अनेकों बार जन्म हुआ, मरण हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक जन्म में जो कुछ घटनाएं घटित हुई हों वो फिर दोहराई जाएं, ऐसा कभी नहीं होता है। सब कुछ परिस्थितियों के साथ बदलता जाता है, कर्म के साथ बदलता जाता है, लेकिन प्यारे प्रभु ने नरलीला जो इस धरती पर की है, वे लीलाएं दिव्य हैं, वे स्वयं दिव्य हैं, और इसका एक बहुत अच्छा आनंददायक परिणाम हम लोगों के लिए यह है कि आज भी उनके भक्त जिस भाव से उनको प्यार करते हैं, उस भाव का आदर करके उसी रूप में उनको दर्शन भी देते हैं और उनके साथ में विविध लीलाएं भी करते हैं। अभी भी ऐसा हो रहा है, ऐसा होता रहता है। एक उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ, सच्ची घटना है। वे सज्जन अभी स्वशरीर विराजमान है। पुरुलिया में एक सज्जन मिले थे मुझे, उन्होंने अपनी कथा सुनाई कि मैं बैठा था, रामायण का पाठ हो रहा था, खूब बाजा बज रहा था, झाल मजीरा बजाकर स्वर के साथ पाठ किया जा रहा था। हनुमान जी का मंदिर था, खूब रोशनी हो रही थी, ट्यूबलाइट्स बहुत से लगाए गए थे और बड़ा समारोह था। उसमें मैं बैठा पाठ कर रहा था। मैं ब्राह्मण हूँ, बैंक में नौकरी करता हूँ। मित्रों ने मुझे बुला लिया था कि चलो पाठ में शामिल हो। मैं सबके स्वर में स्वर मिलाकर गा ही रहा था, इतनी ही देर में पता नहीं सब दृश्य कहाँ गायब हो गया। न लाइट है, न बाजा गाजा है, न धूमधाम है, न लोगों की भीड़ भाड़ है, कुछ नहीं, सब कहाँ गायब हो गया। और मैंने देखा कि मैं बैठा हूँ मिथिलापुरी में, जनकपुर की सभा में, धनुष यज्ञ की भीड़ में मैं बैठा हूँ, और रंगभूमि में उसी जगह पर बड़ा विशाल धनुष रखा हुआ है। और मैंने देखा कि गुरु महाराज के पास बैठे हैं राजकुमार कौशल किशोर। गुरु जी ने आज्ञा दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। पाठ में इस चौपाई के गाते ही गाते गाना और शरीर और संसार, मंदिर और पाठ स्थान सब खत्म हो गया और जनकपुर के धनुष यज्ञ का दृश्य वहां उपस्थित हो गया और चारों ओर खूब भीड़ लगी है और राघवेंद्र सरकार के प्रकाश से यज्ञ भूमि में चारों ओर जगमग जगमग हो रहा है। उसके बाद मैंने देखा कि श्री राम लला जी उठकर खड़े हो रहे हैं। उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया और मंच से उतरकर एक एक कदम बड़े धीरज से और बड़ी स्थिरता से रख रहे हैं। मैं देख देख कर मोहित हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। सभा में सब लोग एकदम सन्नाटे में चुपचाप बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि बड़े बड़े वीर वहां हार चुके थे, सब लोग स्तब्ध होकर देख रहे थे कि 15 वर्ष का राजकुमार, अति सुकुमार बालक विकराल धनुष तोड़ने जा रहा है। इसलिए सब लोग एकदम आश्चर्यचकित थे ही। और इधर राजकुमार धीरे धीरे अपनी राजसी चाल में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आ रहे थे धनुष के पास। उनके दर्शन से इतना आकर्षण हो गया, उनके मुख के प्रकाश से और उससे फैलने वाली मधुरता से मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गया था माता जी, मैं क्या बताऊं, पता नहीं मैं कहां था। आप सुन रहे हैं, यह अनुभव है एक मानव का। अब आप देखिए, दिव्य दर्शन के रस में अहम का पता कहां रहेगा। वो ब्राह्मण युवक लीन हो गया था उस प्रेम में और संयोग की बात थी कि उसके साथ मेरे पास वहां के मानव सेवा संघ के कार्यकर्ता बैठे थे वे भाई रामायण के उस पाठ के भी आयोजक थे और इस ब्राह्मण युवक के साथ वे भी पाठ में शामिल थे। तो युवक अपने आनंद की बात सुना रहे थे मुझको। उन्होंने उस आयोजनकर्ता की ओर बहुत ही अनख की दृष्टि से देखा और कहने लगे कि माताजी देखिए, यह दुर्गा प्रसाद जो है आपके पास बैठा है, इसने बड़ा दुख दिया मुझको। पाठ के बीच में इसने सोचा कि ब्राह्मण सो गया है तो मेरी बाह पकड़कर मुझको हिला दिया, कहने लगा कि पाठ करने आया है कि सो रहा है, उठ। माताजी मैं सो नहीं रहा था, मैं तो अलौकिक आनंद में था। क्या देख रहा था मैं, कहाँ था, कैसे क्या हो गया, मुझको कितना आनंद था, कितना आनंद था, यह मुझसे कहने की बात नहीं है। और मेरे इस भाई ने पकड़कर मुझको हिला दिया। बस पलक मारते ही दृश्य बदल गया। फिर तो वही झाल मजीरा सुनाई देने लगा, यही चौपाइयां सुनाई देने लगी, बत्ती दिखाई देने लग गई, मंदिर दिख गया और मैं कहां से कहां आ गया। तो वह रूप उस दिन से मेरी आंखों से निकला नहीं है। मैंने उनको कहा नहीं था कि मुझे दर्शन देना, मैंने उनको कहा नहीं था कि अपनी मोहिनी मुझ पर डालना, और बिना मेरे कहे उन्होंने मुझे दर्शन दे दिया, अपनी मोहिनी मुझ पर डाल दी। माता जी अब तो मैं दुनिया के काम के लायक नहीं रह गया। किसी प्रकार से घर बार चला रहा हूं, किसी प्रकार से नौकरी चल रही है, दिन रात वह मोहिनी मूरत मेरी आंख में बसी हुई है। अब मैं तड़प रहा हूं कि प्यारे कब मुझको अपने प्रेम स्वरूप में मिला करके मेरे जीवन को पूरा करेंगे। देखिए इसी असार संसार में उस युवक ने दिव्य चिन्मय का दिव्य दर्शन पाया, नाम रूप लीला और धाम की दिव्यता सिद्ध हो गई इस उदाहरण से। और बाकी इस संसार का क्या हाल है कि ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से, जगत के संपर्क से जिन दृश्यों को हम देखते हैं उनको दोबारा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पलक के गिरने और उठने के बाद आप भी बदल गए और वह दृश्य भी बदल गया। तो इतना परिवर्तनशील दृश्यमान जगत है जिसमें निरंतर परिवर्तन है, जरा सी देर के लिए भी जहां ठहराव नहीं है, ऐसे अनित्य जगत में वे लीलामय दिव्य रूप लेकर आते हैं, दिव्य लीलाएं करते हैं और हमारे आपके बीच अद्भुत अद्भुत क्रीड़ाएं कर जाते हैं जो बड़ी ही मनोहारिणी है। ये लीलाएं इस मृत्यु भुवन में होती हैं, परंतु लीलाएं स्वयं दिव्य होती हैं, उनका नाश नहीं होता। इसलिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने, महापुरुषों ने, संसार के कल्याण का मार्ग दिखाने वालों ने हम लोगों को बताया कि अगर तुमको दृश्य ही पसंद आता है तो उस दिव्य दृश्य पर दृष्टि डालो। अगर तुमको नाता रिश्ता संबंध जोड़ना ही पसंद आता है तो उस दिव्य अवतारी से संबंध मान। राम विवाह की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। मिथिला की नारियां कह रही हैं, मिथिलापुरी में विदाई के पहले सखी सहेलियों की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बहुत प्रीति भरी बातें कही और प्रीति के ग्राहक रसिक शिरोमणि कौशल किशोर सुन सुनकर प्रेम विभोर होते जा रहे थे। प्रेमियों की प्रेम भरी बातों को सुनना उन्हें अत्यंत प्रिय लग रहा था। सखियों का अनुरोध था कि हे लालन, आप चले जाएंगे तो दर्शन के बिना हम कैसे रहेंगे, हम नहीं रह सकेंगे। सबको मालूम था कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक विवाह इनका हो गया, अब तो हम इनके महल में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। फिर भी वे मधुर प्रीति से पगी हुई सखियां प्रवाह में कहती चली जा रही हैं कि हे लालन, हम किशोरी जी की दासी होकर रहेंगी, हम आपके राज्य में महल के बाहर फूस की झोपड़ियां बनाकर रहेंगी। अब आप देखिए, ऐसा कह रही हैं राजमहल की राजकुमारियां। किशोरी जी के साथ थोड़े समय के आगे पीछे 13 सखियां मिथिलापुरी में अवतरित हुई थी। उन्होंने कहा कि हम आप दोनों के दर्शन के बिना किसी प्रकार नहीं रह सकती है। बड़े से बड़ा त्याग, बड़ी से बड़ी कठिनाई उठाने की बात उन्होंने कही और कहा कि बस अब इतना ही है कि हमारी प्यारी किशोरी जी के संबंध से आप हमें अपनी करके माने, ये अपनापन अवश्य निभाना, इतना कहां सहन होता उस प्रेम स्वरूप से। सखियों के हृदय में अगर सीमित प्रेम भाव उमड़ रहा है तो उस असीम अनंत में असीम भाव उमड़ रहा है। और वहां उन्होंने कह दिया कि अच्छी बात है सखियों, आपने जो किया मेरे लिए सो किसी ने नहीं किया। मैं आप ही का हूं, मैं सदा सदा से आपका हूं और आपका होकर रहूंगा, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा कह दिया उन्होंने। और जैसा कहा वैसा किया। आज भी उस क्षेत्र में कई भक्त लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि वहां पर इस भाव से अनेकों भक्त युगल सरकार की उपासना करते हैं और इस बात को मानते हैं कि वे रस शिरोमणि मिथिला छोड़कर गए नहीं। आज भी उन लोगों को वहां पर जुगल जोड़ी का दर्शन होता रहता है, मुलाकात होती रहती है। कलिकाल में भी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना संभव है। और इन सारी बातों से, इन सारी बातों के ध्यान में आने से मुझे यह बहुत अच्छी बात लगती है कि अगर दृश्य देखे बिना अपने को सुना सुना लगता है, देखना ही पसंद है, तो उस दिव्य लीला को ही क्यों न देखो जिसका कि कभी नाश नहीं होगा। नाम लिए बिना अपने से नहीं रहा जाता है तो उस दिव्य नाम को क्यों न लो जो सब प्रकार से तुम्हारा लोक परलोक संभाल लेगा। संबंध माने बिना अकेले तुमसे नहीं रहा जाता है तो उस नित्य संबंधी से संबंध क्यों न मानो। सब समय साथ देगा, बहुत अच्छी बात है, यह सब हो सकता है, परंतु कब? जब हम पसंद करें तब। अगर कोई नापसंद करे तो भगवान को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने से रहा कहां जाता है। और भी बढ़िया बात है, देखिए अगर बिना देखे बिना जाने प्रेम स्वरूप परमात्मा से डायरेक्ट सीधा विश्वास करके संबंध आप न मान सकें, तो किसी भगवत अनुरागी संत के कहने से मान लेना चाहिए। ऐसा भी होता है, जीवन की आवश्यकता देख कर भी उनको अपना मानता है आदमी, गुरु के वाक्यों को सुन करके भी मानता है, सदग्रंथों के वाक्यों को पढ़ करके भी मानता है। ये तीनों ही आधार हैं। अपने में आवश्यकता है, रहा ही नहीं जाता बिना संबंध माने, तो नित्य संबंधी से ही संबंध मानना अच्छा है। उसके अतिरिक्त इस जगत में ऐसा संबंध क्या माने जो बन भी जाता है बिगड़ भी जाता है। मीरा जी ने कहा था ना, ऐसे वर को क्या वरूं रे, जो जन्मे मर जाए वर वरिये एक सांवरिया रे, चुड़ल अमर हो जाए। मीरा जी ने नित्य संबंधी को अपना माना था, वे चिर सुहागिन हो गई, अचल सुहागवती हो गई हमेशा के लिए, फिर कभी उनको दुख देखना नहीं पड़ा। इसी प्रकार भक्त जन जो है, संत जन जो है, हम लोगों को दुख से छुड़ाने के लिए, अमर आनंद देने के लिए, अनंत रस का पात्र बनाने के लिए सलाह देते हैं कि संबंध माने बिना तुमसे रहा नहीं जाता है, तो उस नित्य संबंधी को अपना मानो जो लोक परलोक सब निभा देगा, यहाँ का भी और शरीर के त्यागने के बाद का भी सब कुछ पूरा कर देगा, क्योंकि समर्थ है वे। अब मनुष्य की बड़ी भारी बहादुरी है कि वह बिना देखे बिना जाने को अपना मान करके उस पर अपने को समर्पित कर दे, बड़ी भारी बहादुरी है। और उसकी इसी बहादुरी पर रीझ करके परमात्मा उसकी सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं। वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जिसके संबंध की स्वीकृति मात्र से अपनी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, उसी से संबंध मानना सार्थक है। हाँ, प्रकृति के विधान से जो मनुष्यों से संबंध बन गए हैं, अपने जुट गए हैं, उनमें से कुछ हमने जानबूझ करके सचेत हो करके जोड़े और कुछ शरीर के जन्म से संबंध जुट गए, तो इनको साधन रूप दे दिया जाए, इनको सत्य नहीं माना जाए। थोड़े दिनों के लिए संयोग बना है ऐसा जानकर जिसके साथ जितना अच्छा बन पड़े सब व्यवहार किया जाए और फिर संबंध कभी न माना जाए। हमारा इनसे सीधा अपना संबंध नहीं है, इस सत्य को स्वीकार किया जाए। शरीर के नाते भौतिकवाद की दृष्टि से सभी प्राणी एक हैं, अध्यात्मवाद की दृष्टि से सभी निज स्वरूप हैं, ईश्वरवाद की दृष्टि से सब मेरे प्यारे के प्यारे हैं। दार्शनिक दृष्टिकोणों को लेकर के पति पुत्र संतान माता पिता भाई बहन सबके साथ व्यवहार करो। तो उनका चिंतन छूट जाएगा और याद किसकी रहेगी, जिसके नाते से आपने उनकी सेवा की थी उसकी याद रह जाएगी। फिर तो आप इस रस में पगे रहेंगे कि सब कुछ तेरा, केवल तू ही मेरा, बड़ा आनंद रहेगा। अब कोई कहे कि कुटुंबियों का मोह और संपत्ति का लोभ हम छोड़ ही नहीं सकते, तो इतना भी साहस हम नहीं कर सकते, कैसे काम बनेगा भाई? आप चाहते हैं मरणशील शरीर को लेकर मृत्यु भुवन में रहते हुए उस अजन्मा, उस अनादि अनंत परमात्मा के परम प्रेम के पात्र हम बन जाएं और वे प्यारे प्रभु आकर के हमको लाड़ दुलार करें, प्यार करें, गोदी में बिठाएं, संभालें, जैसे कि अन्य भक्तों के साथ उन्होंने किया। इतनी बड़ी बात आप चाहते हैं। अशरीरी त्रिगुणातीत सबसे परे प्रेम के वश होकर मेरे लिए दो हाथ दो पांव बनाकर मेरे पास आ जाए और रूप माधुरी का पान करावे, इतनी ऊंची अभिलाषा आप रखते हैं। और अपनी ओर देखिए, अपने माने हुए मिथ्या संबंधों को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। बड़ी हास्यास्पद बात है। एक बार महाराज जी कहने लगे कि देखो, मनुष्य के हृदय के प्रेम भाव का आदर करने के लिए वह ब्रह्म भाव को छोड़कर जीव भाव स्वीकार करता है और उस प्रेम का आदर करने के लिए तुम अपनी तुच्छ ममताओं को नहीं छोड़ सकते। और फिर कहते हो कि हम ईश्वर विश्वासी हैं, हम ईश्वर के भक्त हैं। भैया, इस प्रकार प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश नहीं होता है। अतः मैं अपने आत्मीय सभी भाई बहनों से बड़ी नम्रता से निवेदन करती हूँ कि अनमोल अवसर है, हम लोग चूके नहीं। जिन्होंने अपने प्रेम के विस्तार के लिए ही हमें रचा है, वे तत्पर हैं हमें अपनाने में। मानव हृदय ही तो वह माध्यम है जिससे प्रेम स्वरूप की मधुरता विश्व में प्रकट होती है। अपना हृदय पट हम खोलें। उधर उन प्रेम स्वरूप में रस उमड़ रहा है हमें भरने के लिए। अब आप शांत। सुख दुख दिन रात के समान अपने आप आने जाने वाली वस्तुएं हैं। सुख की दास्ता और दुख का भय व्यक्ति के विकास में बाधक है। सुख सेवा और दुख त्याग का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। अतः सुख में उदार तथा दुख में विरक्त रहना अनिवार्य है। सुख न चाहने पर भी अपने आप चला जाता है और दुख बिना ही बुलाए स्वतः ही आ जाता है। सुख जाने में और दुख आने में स्वाधीन है। सदैव रहने में दोनों ही असमर्थ हैं। सुख का प्रलोभन और दुख का भय आए हुए सुख दुख का सदुपयोग नहीं करने देता। दुख का पूरा प्रभाव दुखी पर हो जाने से सुख की दासता अपने आप मिट जाती है, जिसके मिटते ही दुख सदा के लिए चला जाता है। अतः आए हुए दुख का पूरा प्रभाव होना आवश्यक है।